te Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Nashtapaye Shabadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Aaj hum Srimad Bhagavatam se par raha hai. Chota skand adhyay 20 aur shlok 12 bhinasya lingasya guna pravaha dravya kriya karaka chetana Atmana Trishtasu Sampatsu Vipatsu Suraya Na Vikriyante Mayi Baddha Saurida Bhinasya Lingasya Guna Pravaho Dravya kriya karaka chetanatmanaha Trishtasu sampatsu vipatsu surayo Navikriyante mai bauddha saurida Bhinasya lingasya guna prabaho Dravya kriya karaka chetanatmanaha Trishtasu sampatsu vipatsu surayo Navikriyante mai baddha sauridaha Bhinasya lingasya guna prabaho Dravya kriya karaka chetanatmanaha Trishtasu sampatsu vipatsu surayo Navikriyante mai bauddha sauridaha Binasya Bhinna Lingasya Sharir ka Guna Tino guno ka Prava Nirantar Parivartan Dravya Bhautik Tattva Kriya Karma Karaka Devata Chaitana Tathaman Atmana Seyukt Drishtasu Anubhav Honepar Sampatsu Sukh Vipatsu Duk Suraya Gyani Log Na Kabhi Nahi Vikriyante Vichalit Hote Hai Mai Mujme Bauda Saurida Mitrata Me Bandhakar Anuvad aur tatpari aaj shila isse Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ke dwara Srila Prabhupada ki Anuvad Bhagavan Vishnu ne Raja Prita se kaha He Rajan Tino guno ki anyonya kriya se hi yah bhautik jagat nirantar parivartanshil hai yah sharir pancha tatvon indriyon ke niyamak devataon tatha atma dwara vikshubd kiye jane wale man se milkar bana hai chunki atma in stool tatha sukshma tatvon ke इस मेल से सर्वथा बिना है अतः मेरे भक्त जो मित्र था तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है यह जानते हुए कभी भी भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होते अनुवाद तत्पर्य प्रश्न तथा है कि यदि जीवात्मा को शारीरिक संयोग के कार्यकलापों का अधीक्षण करना है तो वो शरीर के कार्यों से किस प्रकार उदासीन रह सकता है इसका उत्तर इस प्रकार है ये कार्यकलाप आत्मा के कार्यों से सर्वथा भिन्न है यहाँ पर एक मोटा सा उदाहरण दिया जा रहा है एक व्यापारी अपनी मोटर कार में बैठकर उसकी चाल का निरीक्षण करता रहता है और चालक को सलाह भी देता चलता है वो जानता रहता है कि कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है किंतु तो भी वो अपनी कार से बिना रहता है और अपने व्यापार के विषय में अधिक चिंतित होता है कार में चलते हुए भी वो अपने व्यापार तथा कार्यालय के विषय में सोचता रहता है भले ही वो कार में बैठा रहता है किंतु उसका कार से कोई संबंध नहीं रहता जिस प्रकार व्यापारी सदैव अपने व्यापार के विचारों में मग्न रहता है उसी प्रकार जीवात्मा भी भगवान की सेवा करने के विचारों में मग्न रहता है तभी वो भौतिक शरीर के कार्यकलापों से अपने को पृथक रख सकता है ऐसी उदासीन अवस्था भक्त के लिए ही संभव है यहाँ पर विशेष प्रयोजन से बौद्ध सौरिदा शब्द का प्रयोग हुआ है कर्मी ज्ञानी तथा योगी जनों को भक्ति में नहीं बांधा जा सकता कर्मी जान शरीर के कार्य में व्यस्त रहता है उनके जीवन का लक्ष्य शरीर को सुविधा पहुंचाना है ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन द्वारा बंधन से छूटना चाहता है किंतु उन्हें मुक्त पाद प्राप्त नहीं होता श्रीमद् भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से वे ब्रह्म साक्षात्कार के उच्च पाद से नीचे गिर जाता है योगियों में भी देहात्मबुद्धि होती है वे मानता है कि धारणा आसन प्राणायाम आदि के द्वारा वे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है, किंतु भक्त की स्थिति सदैव दिव्य होती है, क्योंकि श्री भगवान से उसका संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। अतः केवल भक्त ही शरीर के कर्मों तथा पालों से पृथक रहकर अपने वास्तविक कर्म अर्थात भगवान की सेवा में संलग्न रह सकता है। ओम अज्ञाना तिमिरं दस्या ज्ञानंजना सलाखया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपाकदामयं ददति सावदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पदीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव जदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलं कोल नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। बिना सालिंगस्य गुणा प्रवाहो द्रव्य क्रिया कराक चेतनात्मनः त्रिष्टासु संपत्सु विपत्सु सुरयो नविक्रियन्ते मयि बौद्ध सौहृदः। भगवान विष्णु ने राजा प्रीतु से कहा, हे राजन, तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से ही यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। यह शरीर पंच तत्वों इंद्रियों के नियामक देवताओं तथा आत्म द्वारा विक्षुब्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना है। चूंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है, अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है, यह जानते हुए कभी भी भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। तो महाराज प्रीतु के यज्ञस्थल में भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए थे। महाराज प्रीतु की इच्छा थी 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, लेकिन इंद्रदेव तो इसे बहुत विचलित थे और इसलिए उनको रोक दिया। और तो एक काम था यज्ञ, और थोड़ा सा दुखी थे और उनके पुत्र प्रीतु महाराज के उनके पीछे भी पड़ गया इंद्रदेव जी के पीछे। लेकिन उसी समय विष्णु जी प्रकट हो गया, भगवान श्री विष्णु, और प्रीतु महाराज को उपदेश देता है। और यहाँ पर तो इस श्लोक में बताता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है जीवात्मा, और हर शास्त्र में तो लिखा है और प्रभुपाद भी स्पष्ट अलग अलग तत्पर्य में भी लिखा है कि सबसे पहले चीज क्या है कि हमको समझना चाहिए आध्यात्मिक मार्ग में, कि हम तो शरीर ना है अपितु आत्मा है। इस भौतिक ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर से हम अभिन्न है, कृष्ण के नित्य दास है और भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप है, और वैसे ही जीवात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप है। और यह है कि तो ज्ञान तो प्राप्त करना चाहिए सबसे पहले, लेकिन इसके बाद ज्ञान प्राप्त जो हमने किया है इसके अनुसार हमको भी चलना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान हम मिलता है जिससे हम आगे जा सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, जिससे हम अनुभव कर सकते हैं वास्तव में कि हम शरीर नहीं है अभी तो आत्मा है, और अपना भगवान के साथ नित्य संबंध भी अनुभव करना है गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ लोक में। लेकिन हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयाया है, और श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग के अवतार है, और उन्होंने युगदान स्थापित किया है। यह मंत्र महामंत्र का जप या कीर्तन करना यह युगधर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तात्पर्य में भी प्रभुपाद स्पष्ट तो बताता है कि सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है अभी तो आत्मा है। उदाहरण देता है कि अगर कोई कार में कोई बैठता है और गाड़ी चलाता है, लेकिन हमेशा समझ सकता है कि मैं तो गाड़ी से अलग हूँ, लेकिन फिर भी हमने बहुत बार देखा है विशेष करके पश्चिम देशों में कभी कभी तो एक्सीडेंट हो जाती है, और तो पीछे गाड़ी अपने गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी पहुंच गया, और इसके बाद तो गाड़ी के अगर ज़्यादा जोर से नहीं लगा है लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ, तो गाड़ी से निकालता है तो बोलता है मेरे को कहता है मेरे को तो मरा है ना, मेरे को कुछ लगाया है, ऐसे बोलता है। लेकिन गाड़ी को कुछ लगा है, आदमी को अगर धीरे से चलता है तो आदमी तो इससे अलग है, लेकिन ऐसे बोलता है क्योंकि हम अमेठी मैं और मेरा शरीर मेरी गाड़ी है, मेरी संपत्ति है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मैं और हमारा जो सामान है, तो ये मोह है अहम ममेति। और लेकिन हम इससे परे तो है, और ये भी समझना चाहिए अनुभव करना है, लेकिन तो आसान नहीं है। जैसे अभी हम तो साधक के अवस्था पे है इस शरीर में है, लेकिन फिर भी शुरुआत में देहात्म बुद्धि है, और कभी कभी कीर्तन में नाचता है, और दूसरे तो कभी कभी दूसरे लोग नाचते हैं हमारे साथ, और अगर एक भक्त दूसरे भक्त के पैर पे उसके पैर के ऊपर रखता है तो दूसरे के भी ऐसे कभी होता है तो गुस्सा आ जाता है, अच्छा तरह से देख सकता है पैर कहाँ रखता है, तो वो कुछ बोलता है एक भक्त और दूसरे को अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अहंकार भी है देहात्म बुद्धि है, ज्ञान है लेकिन विज्ञान आए अनुभव नहीं कर किया है। और पुजारी भी महाप्रसाद लेता है, लेकिन अगर कभी कभी दूसरे भक्त को तो थोड़ा सा महाप्रसाद चाहिए, तो पुजारी में रूप में आ जाता है और पुजारी के प्रसाद लेता है, तो पुजारी बाहर आता है और देखता है मेरे महाप्रसाद कहाँ है, कहाँ है महाप्रसाद। तो और रोज रोज मिलते लेकिन फिर भी एक दिन नहीं मिलता है, तो बहुत तो विचलित हो जाते हैं, कहाँ है महाप्रसाद, किसने लिया है, किसने मेरे महाप्रसाद की चोरी किया है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें ऐसे भी नम्र भाव में रहना चाहिए और कोई भौतिक आसक्ति नहीं होना चाहिए कृष्ण के प्रति, नाम कृष्ण नाम के प्रति आसक्ति होना चाहिए, नाम रुचि होने चाहिए। लेकिन फिर भी तो इस भौतिक जगत में रहते हुए तो शास्त्र के अनुसार चलना है, और जैसे अगर किसी गृहस्थ के घर है तो और संपत्ति है इसका भी देखभाल करना है, और देखना इसलिए तो लक भी लगाता है, अन्यथा तो दूसरे लोग आ जाते हैं और सब ले जाता है। तो अपना सामान का ध्यान भी रखना चाहिए लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसक्त है तो कृष्ण कुछ करता है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो विनम्र भाव में रहना चाहिए हमेशा। तो इस संबंध में बहुत सारे उदाहरण है, रामानुजाचार्य के संप्रचार के संप्रदाय में के शिष्य थे, रामानुजाचार्य के सन्यासी थे और उनके गृहस्थ भी थे और ये भी बड़े भक्त थे, लेकिन कभी कभी हो जाता है तो हाँ सन्यासी भी सोचता है और ब्रह्मचारी हम आ गया है, ये गृहस्थ तो बहुत तुच्छा है, नीचा है, क्या सेवा कर सकता है। और लेकिन विनम्र भाव में नहीं रहने चाहिए, गृहस्थों को भी ना सोचना चाहिए मैं गृहस्थ हूँ, मैं ठीक से चलता हूँ और ब्रह्मचारी कुछ नहीं करता है, और हमेशा विनम्र भाव में रहना चाहिए। और अपने बारे में तो हम कैसे करें देखना है, और वैष्णव हमेशा देखता है कि दूसरे भक्त तो अच्छे तरह से सेवा कर रहा है और हम तो तुच्छा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए प्रयास करना है और अच्छे तरह से सब कुछ करना है, भगवान का चिंतन करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहिए, व्याज बात ना करना, तो टाइम वेस्ट ना करना, एक क्षण भी ना है, हमेशा तन मन वाचा कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो ऐसे करते हुए आगे जाना है। तो अगर सख्त है भौतिक चीज के बारे में, मोबाइल फोन लैपटॉप, तो आगे जाना तो मुश्किल है, कपड़े के भी कभी कभी तो छत पे कपड़े तो रखता है, आज भी तो सुरक्षित है थोड़ा सा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले तो बांदर ले जाते थे कपड़े और दूसरे भक्त लोग दूसरे के भक्त की कपड़े भी कभी कभी ले जाते थे। तो और एक बात तो रामानुज के शिष्य सन्यासी लोग भी उनके बाह्य वस्त्र उत्तरीय और जो बाह्यवेश तो रखते थे और कोपिन भी सुख करने के लिए रखते थे। और रामानुजाचार्य अपने एक शिष्य को बताए थे थोड़ा सा ये कपड़े बदलना है, उधर इधर उधर रखना है, देख लेंगे कैसे है ये सन्यासी लोग। और तो सन्यासी एक देखा मेरे कपड़े कहाँ है कुपिन कहाँ है, विचलित है थोड़ा सा, कहाँ है। तो और इसके बाद उनके एक शिष्य के पास तो भेज दिया सन्यासी और उनके आभूषण जो गृहस्था उनको कहीं पर भेज दिया, और सन्यासी लोग को बोल दिया अभी रात को देख लो आभूषण ले लो, और ये स्त्री क्या करती है, गृहस्थ की पत्नी दार पत्नी क्या करती है, और गृहस्थ क्या उनके क्या भाव है। तो वहाँ पर गए सन्यासी लोग और अंदर गए और ये गृहस्थ की दान पत्नी के तो एक साइड पे लेट गए थी, तो दाएं साइड से जो कि आभूषण तो कंगन निकल गया और हार भी निकाला और एक तो कान के भी, और ये पत्नी तो उनको तो मालूम था कि ये उनके शिष्य सन्यासी, लेकिन चुपचाप वहाँ पर थी। और इसके बाद ये चले गया और उन्होंने भी सोचा अभी दूसरे साइड में तो लेटना है, तो ऐसे करके दूसरे साइड में भी लेट गए, और ये तो सन्यासी तो चले गए वहाँ से, लेकिन फिर से वापस आए देखने के लिए कि क्या हो रहा है अभी। तो पति वापिस आया और तो पत्नी पति को बताए गए थे कि ये हमारे गुरु महाराज के सन्यासी एक दो आए यहाँ पर उदय साहित के ज्वेलरी निकाल गया है। तो और पति ने बोला और तुमने क्या किया है, तो दूसरे साइड के क्यों ना दिया। तो पत्नी ने बोली हाँ मैंने तो दूसरे साइड तो ले गया है, लेकिन तो भाई से ये तो वहाँ से चले गया। तो ये भी सुनकर तो सन्यासी लोगों को अनुभव किया कि ये भी रक्त है, गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए भी रक्त थे। तो जहाँ पर भी है, किस आश्रम में है और क्या सेवा भी करे, जिसे वन आश्रम के अनुसार, तो ये स्वभाव के अनुसार, शरीर के अनुसार, तो भावना के अनुसार अलग अलग सेवा है। गुरुदेव या उनके प्रतिनिधि, जिस मंदिर के प्रेसिडेंट, अलग अलग सेवा देता है भक्त के स्वभाव के अनुसार। और हमेशा इस भाव से सेवा करना चाहिए कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और अगर कोई पुजारी है, ना ही सोचना चाहिए कि मैं पुजारी हूँ, दूसरे से बड़े हैं, और प्रचारक हूँ, किताब के वितरण कर रहा हूँ, मैं दूसरे से बड़े हूँ। नहीं, हम सब कृष्ण के तुच्छ नित्य दास हैं, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार हम सेवा कर रहा है। और तो ये इसमें जैसे यहाँ पर तो श्लोक में प्रभुपद ने भी तात्पर्य में उल्लेख किया है कि दृढ़ता पूर्वक हमको सेवा करना चाहिए। और यहाँ पर भी दो शब्द है, ये बौद्ध सौहृदा तो मित्रता में बांधकर मित्रता संबंध होना चाहिए। सबसे पहले दस्या, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पर सेवनम अर्चनम वंदनम दस्याम, हमेशा प्रभुपुरुष ने श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि मेरे इस भाव में हमको रहना चाहिए, मैं कृष्ण के दास हूँ। ऐसे कहते हुए हमको भगवत श्रवण करना चाहिए, कीर्तन या जप करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, अलग अलग सेवा करनी चाहिए। हमेशा इस दास्य भाव में रहना चाहिए, मैं कृष्ण के दास हूँ। लेकिन इसके बाद जब आध्यात्मिक अवस्था पे स्थिर है तो समझ सकता है कि कृष्ण हमारे मित्र है, सबसे प्रिय सर्वश्रेष्ठ मित्र है। और ये भाव, ये प्रेम संबंध है, तो प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ पूर्वक बंधा है, यहाँ पर लिखा है। और तात्पर्य में भी प्रभुपाद यहाँ पर बताता है कि तो सिर्फ भक्त के लिए संभव है ये प्रेम संबंध कृष्ण के साथ। दूसरे जो है योगी, कर्म योगी है, ज्ञान योगी और अष्टांग योगी, ये है तो थोड़ा सा समझ सकता है कि भगवान है, संबंध ज्ञान है, भगवान है, हम उनके दास है। लेकिन उनके पूर्ण ज्ञान नहीं है और उनके सेवा भाव सेवा वृत्ति नहीं है। कर्मी थोड़ा सा कभी कभी भगवान को कुछ लगाता है, अर्पण करता है, लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ कर रहे हैं वास्तव में। और ज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त करता है क्योंकि समझ सकता है कि इस भौतिक जगत में तो बहुत सारे दुख है, और इसलिए इससे अलावा हमको रहना चाहिए, आध्यात्मिक अवस्था पर रहना चाहिए और परम सत्य के संबंध में रहना चाहिए। लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है तो मायावादी है, जो से कहता है कि परम तत्व, परम ब्रह्म ये निराकार है, कोई रूप नहीं है, कोई भाव नहीं है। तो लेकिन ये उनके ब्रह्म है, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम आध्यात्मिक वस्तु है, हम जीवात्मा है और परम सत्य भी परम ब्रह्म है, लेकिन उनके स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ज्ञानी भी उनके पास तो पूर्ण ज्ञान है, सेवा भाव नहीं है क्योंकि भगवान को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी दूसरे भी है जो भगवान को मानता है लेकिन उनके सेवा भाव नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करना है लेकिन सेवा भी होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, सेवा ही करना चाहिए। जिवेर सो पोई नित्य कृष्णेर नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास है। तो गौर लीला में सबके भक्तों की सेवा भाव है और कृष्ण लीला में भी वैकुंठ लोग में भी, लेकिन जब गौर लीला में है और विशेष करके ब्रज लीला में, इसके अलावा भी घनिष्ठ संबंध है, जैसे मैत्रता। यहाँ पर कृष्ण ये हमारे सबसे प्रिय मित्र है, तो गोप ऐसे सोचता है और वास्तव में जो उनके सेवक भी है उनके भी एक भाव में भी है कि कृष्ण तो हम ये हमारे स्वामी है लेकिन मित्र भी है, और वत्सल्य भाव में भी है तो उनके तो भाव है कि ये मेरे पुत्र है लेकिन घनिष्ठ संबंध है। तो और गोपियाँ के भी कृष्णा ये भी सोचती है कृष्ण हम कृष्ण के दासी है, कृष्ण मेरे सबसे प्रिय मित्र है, उनके भी वत्सल्य भाव जैसे तरह से कभी प्रकट हो जाते हैं। और तो माधुर्य भाव है उनके, प्रियतम है कृष्ण उनके, ये सर्वोत्तम भाव है, ये गोपियाँ के भाव है। तो ये घनिष्ठ संबंध सिर्फ भक्त के लिए संभव है, कर्मी के लिए, ज्ञानी के लिए और योगी के लिए भी संभव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये योगी जो जन जो है ये परमात्मा के चिंतन इसमें लीन है, लेकिन ये भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ये विष्णु ये शंकर शान के विस्तार रूप है, महाशंकर शान वैकुंठ लोक के महाशंकर शान उनके विस्तार रूप है ये तीन पुरुष अवतार, करण रक्षा विष्णु, गर्भ रक्षा विष्णु और परमात्मा क्षीर रक्षा विष्णु। और क्षीरदाय विष्णु, क्षीर रक्षा विष्णु परमात्मा सबके दिल में जो इस भौतिक जगत में देहधारी है, पशु के शरीर में हो, पक्षी के शरीर में हो या मनुष्य के शरीर में हो, सबके साथ है परमात्मा, जीवात्मा देहदार जीवात्मा के साथ रहता है जब इस भौतिक जगत में है, जब तक तो हमेशा उनके साथ है, उनको सहायता देने के लिए, सहायता देने के लिए यहाँ पर है। लेकिन परमात्मा के साथ नित्य संबंध नहीं है, नित्य संबंध गोलोक के विराजमान यशोदा नंदन के साथ है, या वैकुंठ लोक में नारायण, या अयोध्या में रामचंद्र, या द्वारका में द्वारकाधीश, उनके साथ नित्य संबंध है। लेकिन जब तक हम इस भौतिक जगत में है तब तक परमात्मा हमारे साथ है, लेकिन जब ये उत्तम अवस्था पर पहुंचता है तो समझ सकता है कि वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ ही है, या महाप्रभु के साथ, या दोनों के साथ, महाप्रभु कृष्ण। गौरी वैष्णव जो है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के उपासक है, ये गौरी लीला में प्रवेश कर सकता है और साथ ही साथ कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है, उनके दोनों रूप होंगे, गौरी लीला में एक रूप और कृष्ण लीला में एक रूप। तो उनके यहाँ पर सर्वोत्तम प्रेम की अवस्था है ये कृष्ण लीला में और गौर लीला में है, मधुर्य भाव है। लेकिन दूसरे जगह में जैसे मथुरा में भी ये मिश्रित है, ऐश्वर्य भाव है और मधुर्य भाव भी है, लेकिन ये भी मानता है कि कृष्ण भगवान है। और द्वारका में भी वहाँ पर मधुर्य और कम है और ऐश्वर्य और ज़्यादा है, और वैकुंठ लोक में वहाँ पर भी प्रेम है, विष्णु के प्रति प्रेम है, निर्मल शुद्ध प्रेम है, लेकिन वहाँ पर ऐश्वर्य भाव है, ये भगवान है और उनके दास है। लेकिन ब्रज में या गौर लीला में ये प्राणनाथ है महाप्रभु, या कृष्णा प्राणनाथ है, उनको नहीं मालूम है कि ये कृष्णा तो भगवान है। तो ये मधुर्य भाव है, ये सबसे घनिष्ठ संबंध है। तो उस अवस्थ पे तो मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु युग अवतार है और युग धर्म दिया है, ये महामंत्र के जप या कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जो भी महाप्रभु के पास जाता है उनके शरण में आ जाता है उनके जो इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और अगर कोई वैकुंठ लोक में जाना चाहता है तो जा सकता है महाप्रभु की कृपा से, और रामचंद्र के भक्त भी उनकी कृपा से अयोध्या में प्रवेश कर सकता है। लेकिन वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज भाव देने के लिए आया है, और विशेष करके उन उज्जवल रास तो मधुर्य भाव देने के लिए आया है, लेकिन सब भाव दे सकता है। तो जब करना है भाव के साथ ब्रिजवासियाँ नित्य सिद्ध परिकारों के भाव लेकर हमको भजन करना है, जप करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, सब कुछ करना चाहिए ब्रज भाव में। लेकिन तुरंत इसमें तो लीन होना तो आसान नहीं है। वैद्य भक्ति के नियम का पालन करते हुए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद नवम स्कंद भी पढ़ना है, प्रहलाद चरित्र ध्रुव चरित्र भी पढ़ना है, और पहले समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और हम उनके तुच्छ नित्य दास हैं। लेकिन अंत में तो हम ब्रज भाव में प्रवेश करना है, और तब भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है। लेकिन सड़क के शरीर में उदारनाथ के लिए भी दूसरों को भी बताना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और हम उनके दास हैं। तो महाप्रभु उन्होंने भी दिखाया था कि उनके अंतर्दशा है, बाह्य दशा है और मध्यम दशा है। कभी कभी तो राधा कृष्ण की लीला में लीन थे, वो तो राधा कृष्ण ही है, लेकिन हमको दिखाने के लिए गोपी बाब भी प्रकट किए थे और बताते थे। एक बार स्वप्न में देखा, पुरी में थे और तो उनके पास पहुंच गए भक्त लोग और महामंत्र उनके कान में उच्चारण किए थे, तो बाहर अवस्थ में पहुंच गया और उन्होंने देखा अब क्यों यहाँ पर आया है, मेरे को जगाया, मैं तो राधा कृष्ण का दर्शन किए थे और मैं यहाँ पर गोपी के रूप में था और राधा कृष्ण की सेवा करना ही थी, गोपी के रूप में फूल अर्पण किए थे। तो अंतर्दशा इसके बाद तो जब देखता है कि राय रामानंद है, स्वरूप दामोदर है और हमको दर्शन लेने जगन्नाथ के और महामंत्र को चरण करना है, ये बाह्य दशा है। तो वैसे ही शुद्ध वैष्णव भी कभी कभी अंतर्दशा में है तो राधा कृष्ण का लीला या गौरलीला का चिंतन कर सकता है, और लेकिन कभी तो इस अवस्था में भी तो होना चाहिए और प्रचार करना है, सेवा करना है गुरु के आदेश के अनुसार। और लेकिन फिर भी हमेशा तो इस भाव में कि मैं कृष्ण के दास हूँ और गुरु और हरि गुरु वैष्णव की सेवा करना चाहिए। तो लेकिन जब आ गया है तो अंतर्दशा में पहुँचता है तो सब कुछ भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण प्रियतम है, सबसे प्रिय मित्र है। तो धीरे धीरे हमको देखना है कि हम इसमें और लीन हो जाते हैं अंतर्दशा में। तो प्रभुपद इसमें भी इंगित करना है कि हमको तो सेवा करना चाहिए लेकिन इसमें भी लीन होना चाहिए वास्तव में कृष्ण लीला में या गौर लीला में, अन्यथा तो गौर और कृष्ण लीला में प्रवेश करना संभव नहीं है। जब देहात्म बुद्धि है, मैं पुजारी हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ मंदिर के, ठीक है ये तो है, ये भी बोलना है, ये भी जरूरत है, लेकिन समझना चाहिए कि वास्तव ये सड़क के शरीर है लेकिन पृथक, मैं इसे पृथक हूँ। तो और वास्तविक हमारे जो आध्यात्मिक शरीर इसका अनुभव करना है। तो चार पांच दिन से पहले भी तो मंदिर में जनार महाराज में थे, उन्होंने भी पढ़ लिया है और एक जो हमारे तो कैलेंडर है इसमें भी लिखा है, ये स्वरूप सीढ़ी है। जब समझ सकते हैं हमारे जो आध्यात्मिक शरीर क्या है और कृष्ण के साथ संबंध क्या है, इसका अनुभव कर रहा है, ये वास्तविक आत्म साक्षात्कार है, ये पर्याप्त है, मैं जीवात्मा हूँ, कृष्ण के दास हो, ठीक है, लेकिन क्या स्वरूप है ये भी अनुभव करना है। जब अच्छा तरह से सारा भजन करता है तो ये संभव है, लेकिन समय भी लगेगा, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए और हमको समझना चाहिए कि वास्तविक आत्म साक्षात्कार ये है। हरे कृष्ण, 9 बज गया, अभी यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की, श्री गौनिताय की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर की, अभी आप सब यहाँ पर आ सकते हैं और थोड़ा सा महाप्रसाद है।